ओम शांति। तो कौन सा समय आ रहा है? बहुत ही नाजुक। भक्त दुहाई दे रहा है। क्या दुहाई दे रहा है? कि दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। बाबा ने जो भी भविष्यवाणियां पूर्व में की थी, आज वो सभी दृष्टिगोचर हो रही हैं, सब दिखाई दे रही हैं। कैसे दिन प्रतिदिन माहौल गर्माता जा रहा है। तो ऐसे समय में हमें अपनी स्थिति को अच्छी से अच्छी, एक रस अचल अडोल बनाने के लिए बाबा हमेशा हमें कई प्रकार की युक्तियां बताते हैं। आज की मुरली में बहुत सारी बाबा ने बातें बताई। सारी मुरली जो थी समय के ऊपर ही थी, अब नहीं तो कब नहीं। तो शुरू से लेकर अंत तक हम मुरली को देखेंगे, सारा समय के इर्द गिर्द बाबा हमको पूरा कितना सचेत कर रहे हैं, जग कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। फिर अंत में कहना पड़ेगा, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुगी खेत। तो बाबा ने हम सबको ब्राह्मण जीवन का महत्व बताया और इस जीवन में हमको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ हमारा समय जा रहा है और फिर कौन से संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों का हमारे जीवन पर क्या असर होता है, हमारी दिनचर्या कैसे अव्यवस्थित हो जाती है, कैसे जीवन में टेंशन उदासी आ जाती है और खाते जमा कैसे करने हैं, कौन कौन से खाते हैं जो भी हम जमा कर सकते हैं, कौन सा समय चल रहा है। तो ये बहुत सारी बातें थी। और किस पुरुषार्थ के आधार पर नंबर आगे ले सकते हो, कैसे पूज्य पद होगा, प्रजा माता पिता के रूप में कैसे मानेंगी। तो ये बहुत सारी बातें आज की मुरली में बाबा ने हम सबको इस ज्ञान से श्रृंगारा है। तो आज बाबा ने किस रूप में किसको देखा? मुरली की शुरुआत क्या थी? ब्राह्मण बच्चों को देखा। किसने देखा? कौन से बाबा ने देखा? शिव बाबा किस रूप में थे? हाँ, लवफुल और लाफुल। वो स्नेह से भी भरपूर है, स्नेह का सागर भी है और ला अर्थात वो नियमों का भी हमको अच्छी तरह से ज्ञान देते हैं, मर्यादाओं में बांधते हैं। तो लवफुल और लाफुल बाप दादा ने ब्राह्मण बच्चों को देखा। तो क्या देखा बाबा ने फिर? बच्चों के खातों को देखा कि जमा कितना किया है और उस जमा के खाते का फिर बाद में क्या परिणाम है, उसके आधार पर क्या होगा। जितना जमा का खाता हमारा होगा उसी आधार पर हमारा राज्य पद होगा और पूज्य पद होगा, और जितना जमा होगा उसी के आधार पर भी प्रजा भी तैयार होगी, भक्तात्मा ही होंगी और प्रजा भी आपको माता पिता के रूप में मानेंगी। तो ये जमा करने का समय हम सबको, बाबा ने बहुत सारे खजाने हमको दिए हुए हैं। मुरली में तो चार खजानों को एक जगह विशेष रूप से जिक्र किया, लेकिन वैसे बहुत सारे खजाने हैं, संकल्प, समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का, दुआओं का खजाना, पवित्रता का खजाना, संतुष्टता का खजाना, खुशी का खजाना, अथाह खजाने हैं। तो सारे दिन में किस अनुपात में हम इन खजानों को अपनी झोली में इकट्ठा कर रहे हैं, बचत के बैंक के खाते में कितना जमा कर रहे हैं, या कहीं माया तो नहीं अंदर सेंध लगा रही है उसको, बाद में पता पड़े खाता तो है ही खाली। आजकल होता है ना, ठगी होती है, फोन आते हैं कि अपना एटीएम नंबर बताओ, है ना, और कोई बेचारे भोले वाले बता देते हैं और बाद में क्या होता है, हाथ में कुछ नहीं रहता है ना। तो ऐसे सूक्ष्म रूप से भी माया को बाबा ने चांस मिल जाता है। आज की मुरली में दो जगह माया का जिक्र है, माया को चांस मिलता है, मार्जिन में मिलता है। तो हमें देखना है कि इस ब्राह्मण जीव में जो कि सारे कल्प में ये थोड़ा सा समय है संगमयुग, इसमें हमको सारे कल्प की प्रारब्ध बनानी है। इसी प्रारब्ध के आधार पर हमारा सारा कल्प चलेगा। कितनी बड़ी लॉटरी है ये, कितना 5000 वर्ष और कितना ये थोड़ा छोटा सा संगम युग, उसमें भी कोई कितने वर्ष कोई कितने वर्ष, तो इस छोटे से संगम में हमको सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करनी है। कितनी बड़ी लॉटरी है। तो सबसे पहली बात तो बाबा ने हम सबको हमारे खाते चेक किए कि इन खातों के जो जमा है खातों में उनके आधार पर क्या क्या होगा। राज्य पद होगा, उसके आधार पर पूज्य पद होगा, उसी के आधार पर आपकी प्रजा बनेगी, उसी के आधार पर भक्त आत्माएं भी होंगे और उसी के आधार पर फिर आपका गायन पूजन होगा। फिर इसके बारे में बाबा ने स्मृति दिलाई एक बाद में। कौन सी स्मृति दिलाई? अगर हमको जमा के खाते भरपूर करने हैं तो उसकी एक स्मृति दिलाई कि अगर आप बच्चे ये स्मृति में रखेंगे तो जमा का खाते जल्दी बढ़ते जाएंगे तीव्र गति से। कौन सी स्मृति थी? बाबा ने कहा उसके लिए एक स्लोगन याद किया, अब नहीं तो कब नहीं। अगर ये स्लोगन याद रखेंगे तो क्या होगा? चार बातें हो जाएंगी। कौन सी? अगर ये स्लोगन हमेशा याद रहे, है ना, जीवन में अगर हमारा पुरुषार्थ ठंडा होता है तो हमको ये स्लोगन याद नहीं रहता है, इसलिए ठंडे हो जाते हैं। तो ये स्लोगन याद रहेगा तो चार बातें हो जाएंगी, पुरुषार्थ एकदम तीव्र गति से आगे चला जाएगा। कौन सी चार बातें थी? अगर ये स्लोगन याद रहेगा तो बाबा ने कहा हर कार्य श्रेष्ठ होगा। दूसरा, हर समय उमंग उत्साह में रहेंगे। तीसरा, हमेशा रूहानी डैश रहेगी, क्या जागृति, जागरूकता, अवेकनिंग, रूहानी जागृति स्वतः बनी रहेगी, करने की जरूरत नहीं है। कैसे बनी रहेगी? अगर ये स्लोगन याद होगा, अब नहीं तो कब नहीं। और चौथी बात, जो संकल्प चलते हैं कर लेंगे, होना तो ही है, हो जाएगा, ये संकल्प स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये चार बातें हो जाएंगी अगर ये स्लोगन हमें निरंतर हमारी स्मृति में बुद्धि में बैठा रहे तो, कि अब नहीं तो कब नहीं, है ना। इसलिए एक पहले बचपन में हम कविता पढ़ते थे, करना है जो काम उसे आज अभी कर डालो, और ये चौथी क्लास में थी, हमको याद नहीं होती थी और हमको पिताजी से खूब मार पड़ी थी, लेकिन ये लाइन कभी हमको भूली नहीं। फिर करना है जो काम उसे आज अभी कर डालो, है ना। आज की मुरली से इससे रिलेटेड है कि बाबा ने बताया ना कि समय का भी कैसे अगर थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो कितना गैप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये स्लोगन हमेशा याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। फिर ये स्लोगन याद रहेगा और इस स्लोगन को हमको यथार्थ अगर हम कार्य में लगाते हैं तो उसके फायदे क्या हैं और नहीं लगाते तो नुकसान क्या है, तो उसके बारे में बाबा ने बताया। अगर संकल्प बदलने को मिल जाता है, समय अनुसार शुभ संकल्प बदल जाता है, यहां बताया जो ऊपर की चार बातें वो है तीव्र पुरुषार्थ, स्लोगन अगर याद रखते हैं और वो चार बातें हम अमल में लाते हैं तो इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अगर वो स्लोगन याद में नहीं है, कभी है कभी नहीं, तो फिर क्या होगा? वो संकल्प बदल जाता है क्योंकि उसको समय मिल जाता है बदलने का। और फिर बदलने से क्या क्या होता है, फिर बहुत सारी बातें बताई। हाँ, शुभ संकल्प जो उसको बदलने का समय चांस मार्जिन मिल जाता है तो क्या क्या होता है फिर? हाँ, तो फिर होता क्या है, अगर हमको 8 घंटा सेवा करनी है तो 6 घंटा करेंगे और 2 घंटा कट हो गया तो हमारा जमा का खाता कम हो गया क्योंकि गैप मिल गया। इसलिए उसी वहां बताया बाबा ने कि तुरंत दान महापुण्य, अर्थात जो भी हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, उसको तुरंत कर देना चाहिए, नहीं तो समय जो बीच में निकल जाता है वो तुरंत हमारा बहुत घाटा पड़ जाता है ना। जैसे एक कहानी सुनी होगी, एक छोटी सी कहानी है, एक बंदर था एक बंदरी थी, है ना, सुना है? सुनी तो होगी, बाद में याद आ जाएगी आपको। तो एक बंदर थी एक बंदर था, दोनों पेड़ पर बैठे थे और आकाशवाणी हुई कि छलांग लगा दो तो तुम परी बन जाएंगे, बंदरी परी और भाई बंदर परा बनेंगे तो परी परा बन जाएंगे, जो भी है परी बन जाएंगे। तो बंदर ने तो सेकंड में छलांग लगा दी और परी बन गई, लेकिन बंदर ने थोड़ा सोचा, बोला टूट जाएंगे हड्डगुड, लेकिन जैसे देखा उसने परी बन गई, उसने भी छलांग मार दी, तो उसी हडगढ़ टूट गए। क्यों? वो थोड़ा सा गैप। तो बाबा ने यही बताया कि हाँ, कोई को तो देखते हैं इसने करना था, मैंने भी यही सोचा मैं भी कर लेता है, तो हमारी भी हालत उस तरह ना हो गई, है ना। तो समय का गैप पड़ जाता है तो कितना टाइम चला जाता है उसमें, फिर संकल्प हमारे चेंज होना शुरू होते हैं, फिर सोचते हैं आज तो 100 करना था, कोई बात नहीं अभी 50 ही कर लेते हैं, 50 फिर बाद में कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ा है, अभी उम्र तो पड़ी है बहुत, है ना, अभी तो बहुत जीना बाकी है, लेकिन भरोसा थोड़ा नहीं है। अच्छा, बाद में अगर 50 करेंगे भी तो भी जमा का खाता माइनस हो गया बहुत सारा, क्योंकि जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है महत्व उसी समय होता है, बाद में दिया और भूख जिस समय है ही नहीं है तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं उसका। जिस समय जिसको सहयोग की आवश्यकता है उसी समय वो दान महादान महापुण्य अर्जित होता है, नहीं तो वो दान दान ही रहता है, और दान वो इतना महत्व नहीं होता, महापुण्य महादान का महत्व है। तो वह कहते गैप नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें क्या होगा, फिर सरकमस्टांस भी ऐसे बन जाएंगी, अगर हमारी सोच तब्दील होती है धीरे धीरे बदलती है तो परिस्थितियां भी वैसे क्रिएट हो जाएंगी, फिर हमको बताने के लिए बहाना भी हो जाएगा, देखो परिस्थितियां ऐसी आ गई थी, लेकिन हमने संकल्प का बीज ही इस धरनी के ऊपर ऐसा बो दिया कि धीरे धीरे उसमें हमारे विचार चेंज हो रहे हैं, जो हम सफल कर सकते थे उस समय और हमने नहीं किया, फिर परिस्थितियां आई सरकमस्टांस ऐसे निर्माण हुए क्रिएट हुए कि हम उसमें उलझ गए, अगर उसमें हम कर देते तो बाबा उसका रिस्पॉन्सिबल बन जाता, वो कैसे न कैसे करके हमारी किसी न किसी तरीके से उन परिस्थितियों को किनारे करके हमारी रक्षा करता, लेकिन हमने थोड़ा सा बाबा को 50% किनारे कर दिया और 50% रखा, तो समय आने पर फिर हमारा भाग्य भी कट हो जाता है। तो बाबा कहते संकल्प जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, संकल्प का खजाना है, इस खजाने को हम किस तरीके से अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, कैसे जमा कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये अब नहीं कब नहीं और समय का गैप ना पड़े, इसमें बदलने से संकल्प भी बदल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बताया बाबा ने उसके बाद, हाँ तुरंत दान महापुण्य, इसमें साथ में बाबा ने बलि की बात कही, बलि जो है ना जाट को उसका महाप्रसाद माना जाता है, अगर चिल्लाते हैं तो वो महाप्रसाद नहीं होता, तो यहां चिल्लाने की बात कौन सी कही कि कर लेंगे हो जाएगा करना ही है, ये हम अंदर से चिल्ला रहे हैं, मर गए तो मर गए, मना ब्राह्मण जीवन में हमने कदम रख दिया तो रख दिया, फिर आगे पीछे देखना, सिर ओखली में दिया तो मुस्लिम से क्या डरना, फिर है ना, फिर तो सारे तरफ से चारों तरफ से कोई कुछ भी कहे, एक बार सिर पर कफन बांध लिया तो फिर पीछे मुड़ के देखने का नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं तो आएंगी आएंगी, कदम कदम पर परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को पार करने का सहज साहस विश्वास आत्मबल हमारे में तभी आएगा जब हम दृढ़ता पूर्वक उस कदम पर आगे चलेंगे, दृढ़ता में ही सफलता है, इसे मुरली में बाबा ने जिक्र किया, तो उसकी हमारी आंख हमारे ऊपर आएगी। तो एक धक से जट से अपने आप को समर्पण कर देना है, समर्पण अर्थात यहाँ मन की बात है, मन की समर्पणता, भले हम कहीं भी रह रहे हैं, भले गर्गस्थ में रह रहे हैं, कर्म क्षेत्र पर काम करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो भगवान के प्रति कितना समर्पण रूप से है, चाहे लौकिक सेवा कर रहे हैं, चाहे कार्यालय में किसी ऑफिस में हैं, लेकिन हर काम को हम अगर बाबा के आगे समर्पित होकर करते हैं तो हमारा निश्चित रूप से जमा होता है, और वो कर्म करते भी हमें अंदर से निमित्त भाव बना जाए, तीन चार बातें हैं, निमित्त भाव, कर्ण करावनहार की स्मृति है, कर्म करते हुए भी न्यारेपन की अवस्था, कर्मयोगी अवस्था, या कर्म करने के बाद उसको भगवान को हम समर्पण कर दें, ताकि वो कर्म का लेप शेप हमारे ऊपर प्रभाव न डाले, उस कर्म से हम अप्रभावित रहें, उस कर्म में योग शामिल हो जाए, इसलिए बाबा ने इसमें मुरली में कर्म योग का वायलेंस वो भी बताया आगे जाकर। तो हमको ये देखना है कि कर्म करते भी हमको समर्पणता की अवस्था हमें कहां भी हम रहते हैं, मन की समर्पणता की बात है, ऐसा नहीं हम यहां भले बैठे हैं लेकिन मन बुद्धि हमारा और भटक रहा है, इसलिए बताया ना गीत में भी कि खेल पाल तज दो, अभी छोड़ दो इनको, बहुत टाइम हो गया, अभी अगर हम यहां बैठे भी मन से अपने मन को छोटी छोटी बातों के खेल पाल में उलझा रहे हैं तो उसको भी क्या आएंगे, समर्पण थोड़ा नहीं गाएंगे, समर्पणता तो हमारे मन की अवस्था है, मन से हम कितना निष्ठापूर्वक चाहे वो सेवा के प्रति, बाबा के कार्यों के प्रति, किसी को संदेश देने के प्रति, हम कितना निष्ठापूर्वक उसके प्रति अपना समय दे रहे हैं, तन मन धन समेत संकल्प दे रहे हैं, तो झटकू जो है एक झट से सोचा तो सोचा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने का, है ना। और ये हमारी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय की साधना के बाद, साधना ये नहीं है अर्थात बैठे बैठे, साधना हमारी कर्मों में भी साधना समाई हुई है, क्योंकि वास्तव में आज संसार में मुख से सुनना कम चाहते हैं लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को देखना चाहते हैं। तो लंबे समय से अगर हमारे जीवन में अचल अडोल अवस्था है, एक रस अवस्था है, हम अपने ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर निरंतर बाबा की आज्ञा के अनुसार श्रीमद अनुसार चल रहे हैं, पूरा फॉलो कर रहे हैं, पूरा तन मन धन से जितनी हमारे में क्षमता है पूरा कर रहे हैं, तो हम समर्पण है। और उस समर्पणता का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा, पूरे घर पर पड़ेगा, और वो एक ना एक दिन घर वाले आगे झुकेंगे झुकेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा हट्टी तो एक ही है, जाना क्या है सबको। तो हमें मन से भी पूर्ण रूप से समर्पण होकर रहना है, तो कहेंगे झाटकू, तो कहेंगे हमारे जीवन जो है ना महाप्रसाद के रूप में भगवान के आगे अर्पित है। तो ये महाप्रसाद की बात थी। फिर उसके बाद बाबा ने क्या कहा, अगर बच्चे सोचते हैं कि अभी कर लेंगे कल कर लेंगे, तो सोचते सोचते क्या होता है, फिर कहां चले जाएंगे, सोचते सोचते त्रेता में पहुंच जाएंगे। तो फिर उसमें क्या होगा, सोचते सोचते और फिर दूसरे संकल्पों की लाइन शुरू हो जाती है, अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों के अंदर में चक्कर भी चलना शुरू होते हैं, और आत्मा उसी में उलझ जाती है। जैसे अभिमन्यु चक्कर भी में फंस गया, निकल नहीं पाया, उसी तरह आत्मा भी अनेक प्रकार के संकल्पों के चक्कर में फंस जाती है। कभी किसी को याद करे, देदारियों के में फंसी है, या छोटे मोटे बातों को पकड़ के रखा हुआ है, या किसी ने कुछ कह दिया उसी बात को पकड़ के रखा हुआ है, कहने वाला चला भी गया, समय भी बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन अगर हमने उन्हीं बातों को पकड़ के रखा हुआ है तो अर्थात हम उस चक्र में फंसे हुए हैं, छोड़ो तो छूटे। तो बाबा ने कहा यहां चाहिए कौन सी पावर, संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। समर्थ संकल्प है तो एक समर्थ संकल्प का पद्म गुणा जमा होता है, अगर व्यर्थ संकल्प है तो क्या होता है, यहां फिर बहुत सारी बातें बताई, व्यर्थ संकल्प का भी हिसाब बहुत बनता है, और उसका परिणाम चार पांच बातें बताई, कौन सी, उदासी रहेगी जीवन में, खुशी गुम हो जाएगी, दिल शिकस्त हो जाएंगे, और पता नहीं ये लगेगा, पता नहीं मेरी इतने दिन से खुशी कहां चलेगी। तो ये क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि संकल्पों से हम युद्ध कर रहे हैं अंदर में, कुरुक्षेत्र का मैदान हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है, अंदर में लड़ाई चल रही है, अपने आप से, दूसरे से नहीं है, अपने आप को कोस रहे हैं। अपने जीवन की जो भी घटनाएं हो गई हैं, चाहे वो किसी भी कारणवश हुई हो, उनको पकड़ के रखा हुआ है, उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो बीत गया। इसलिए बाबा ने हमको अनेक प्रकार के शस्त्र दिए हुए हैं, फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी अर्थात बिंदी, काम खत्म हुआ, उसको ना हम कुछ कर सकते हैं ना बाबा कुछ कर सकता है, सीधी सी बात है, सो बीत गया हमारे हाथ से, वो तो कमान से तीर निकल चुका है, वापस तो आ नहीं सकता है, समय निकल चुका हुआ है, वो पानी उस नदी से बह चुका हुआ है, वापस थोड़ा नहीं आएगा। तो उसी तरह से हमको वहां ठहर नहीं जाना है, हो गया तो हो गया, लेकिन अब तो हमारा प्रेजेंट तो हमारे हाथ में ना, नाउ अभी तो हमारे हाथ में है। मनुष्य या तो क्या होता है, या तो पास्ट की बातों को पकड़ के रखा हुआ है, या फ्यूचर को बारे में सोच रहे हैं, तो दोनों पार्टों के बीच में पिस रहे हैं, और वर्तमान दोनों में खत्म होता जा रहा है हमारा। तो पास्ट जो बीत गया सो बीत गया, जो जमा हो गया वो भी ठीक है, माइनस हुआ वो भी ठीक है, लेकिन उससे अगर हमने जीवन में कोई अलग गलतियां की हैं पास्ट में, तो उनसे हमको सीख कर हमके वर्तमान को तो श्रेष्ठ बना लें। वर्तमान में अगर हम बीज अच्छा बोएंगे तो फ्यूचर अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाएगा, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए जीने का मजा वर्तमान में संगमयुग है, क्योंकि संगमयुग टॉप पॉइंट है, ये पूरे सृष्टि का सृष्टि चक्र का नजारा हम अभी देख रहे हैं, 84 जन्मों की हिस्ट्री जायोग्राफी आदि मध्यांत का ज्ञान अभी हमको है, बाकी सारे कल्प में तो है ही नहीं है। तो जो हमको पढ़ाई पढ़नी चाहिए उसको हम छोड़ के दूसरी बातों को, रावण वाली पढ़ाई पढ़ के पकड़ के रखी है। रावण क्या करता है, कल की मुरली में था ना, भटकाता है, क्यों, क्योंकि उसका अपना भी घर नहीं है, खुद भी भटकता था, हमको भी भटकाता रहता है, तो हम कहीं उसी बात को पकड़ के रखे हैं। तो पिछली बातें जो भी बीत गई बचपन से लेकर अभी तक, पास्ट इज पास्ट, फिनिश इज फिनिश, हाँ उनसे हमको सीखना है कि फ्यूचर में हमको ऐसे श्रेष्ठ ना हो। उनसे हमने पाठ पढ़ा, वो बातें भी हमको कुछ सिखा के गई, हमको कुछ जागृत करके गई, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करके गई, तो उन बातों को छोड़ देना, पास्ट इज पास्ट। तो व्यर्थ संकल्पों का नहीं तो समुद्र चलता रहता है। तो बाबा ने कहा अगर उन बातों को पकड़ गए थे तो जीवन में ना खुशी होगी, उदासी रहेगी, दिल शिकस्त होंगे, सोचेंगे पता नहीं इतने दिन से खुशी गुम हो गई, कहाँ चली गई, क्या हो गया, ब्राह्मण जीवन तो है लेकिन कोई मजा ही नहीं आ रहा जीवन जीने का, क्योंकि हमने बातों को पकड़ रखा है, तो उन बातों को वहीं छोड़ देने का, आज यही छोड़ देना है इस तैयार में, क्योंकि इस तैयार के लिए बाबा ने क्या कहा हुआ है, हाँ व्यर्थ संकल्पों को इस यज्ञ में स्वाहा कर देना है, सोचना है कि यहाँ यज्ञ चल रहा है और सारे व्यर्थ संकल्पों का किचरा सारा निकल गया यज्ञ में स्वाहा हो रहा है, और आज से हमारे मन में समर संकल्पों की खान, एक नई खान निकली है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों के हीरे निकल रहे हैं, मोती निकल रहे हैं, तो वो क्रिएट करना है। तो ये बात कही कि व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है। फिर क्या होता है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, फिर उदासी होती है, उदासी होने के बाद क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं उसके बाद, कि कहीं दूर चले जाएं, अकेले चले जाएं, एकांत में चले जाएं, है ना, खुले में चले जाएं, हाँ जी पहाड़ी पर चले जाएं, कहां बाबा पहाड़ी पर, फिर वहां भालू भी मिलेगा फिर भालू कर बहने होंगी तो ऊपर बैठ जाएंगी, शक्ति है ना तो बाबा ने कहा वहां फिर क्या करना है, उदासी आती तो अपने को अकेला समझते हैं, तो बाबा ने कहा अपने को अकेला नहीं समझो, ये संगम युग कौन सा युग है, कंबाइंड रहने का युग है, अकेले होने पर ही माया अटैक करती है ना, छोटा बच्चा अपने पापा के साथ में होता तो उसको कोई डर होता है, उसको पता है हवा में उछाल रहा है तो निश्चिंत है, उसको पता है ना, जैसे एक बार एक छोटी सी कहानी है कि हेलीकॉप्टर में थे, हेलीकॉप्टर उड़ा था बड़ा हिलने डुलने लगा, तो बच्चा ही बैठा था, बाकी सब लोग चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं लेकिन वो बच्चा नहीं चिल्ला रहा है, तो सबने पूछा आप क्यों नहीं चिल्ला रहे, बोला चलाने वाला मेरा पापा ही है, बचाना होगा तो उसको बचा लेगा वो, तो इस तरह हमारे जीवन की नैया किसके हवाले है, भगवान के हवाले है, तो वो चला रहा है निश्चिंत रहने का है, ये नहीं सोचने का क्या होगा कैसे होगा, नहीं वो हमारे साथ हमेशा है, कंबाइंड है उसका साथ, इसलिए बाबा ने कहा स्नेह की छत्रछाया में हमेशा रहो, कल का स्लोगन था ना, स्नेह की छत्रछाया में रहो तो क्या होगा, माया की छाया नहीं पड़ सकती है ना, तो बाबा को हमेशा हमें साथ रखना, अकेले कभी नहीं होना है ना, और ये वास्तव में लाइफ तो अकेले ही, संसार के देहधारी हमको आकर्षित ना करें, क्योंकि संसार के देहधारियों के बारे में हम चिंतन करेंगे, उनसे ज्यादा रिलेशन बढ़ाएंगे, कोई अपेक्षा रखेंगे, कुछ इच्छाएं होंगी उनके प्रति, आकांक्षाएं होंगी, वो हमारी पूर्ण होने वाली नहीं है, अगर वो पूर्ण कर भी देते हैं तो उन वो हमारे हमारे से बहुत इच्छाएं पैदा कर देंगे, वो हमारे से भी उनको बहुत इच्छाएं होंगी कि ये हमारी इच्छाएं पूर्ण करें, और वो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो नियम मर्यादाओं के अनुकूल थोड़ा उनको तोड़ेंगे, थोड़ा नहीं उनके अनुकूल ही चलेंगे, तो एक सच्चा अविनाशी बाप ही हमारा साथी है जिसके साथ कंबाइंड रूप में रहना है, और उसकी अनुभूति तब होगी जब हम अपने शरीर से लंबे समय से इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, तो नहीं तो उसकी अनुभूति नहीं होगी, या तो फरिश्ता रूप में कि बाप दादा, अव्यक्त रूप में, आज के मूल्य में अव्यक्त रूप का भी जिक्र है कि अव्यक्त रूप में बाबा की छत्रछाया मेरे ऊपर है, वो मेरे अंग संग है, चलते फिरते अनुभव करना है, और अधिकतर पहले भी जिक्र करते हैं हम कि अधिकतर हमको योग चलते फिरते ज्यादा करना है, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि बैठने को मिलेगा ही नहीं, ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि कर्म क्षेत्र पर हमको अधिक से अधिक अपने आप को सशक्त बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, तो पहले से हमको चलते फिरते उठते बैठते बाबा को अपने अंग संग अनुभव करना है, फीलिंग करना है कि सचमुच उसकी छत्रछाया हमारे ऊपर है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, बाबा का हस्त मेरे मस्तक के ऊपर तिलक लगा रहा है निरंतर, बाबा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहा है, मुझे आत्मा को सर्वशक्तियों से फुल चार्ज कर रहा है, मेरी सारी कर्मेंद्रियों को वो प्योर कर रहा है, जैसे वो पवित्रता का सागर पूरा निरंतर झरने के रूप में मेरे ऊपर बरस रहा है, तो चलते फिरते संकल्पों की सारी याद की बात है, याद कोई शून्य की अवस्था नहीं है कि हम बैठ के और शून्य अवस्था नहीं, याद संकल्प चलेंगे चलेंगे, किसी को हम याद करते हैं तो उसकी अच्छी बातें याद आती है ना, उसका चेहरा याद आएगा, उसके चरित्र याद आएंगे, उसकी बातें याद आएंगी, जहां हम उसके साथ बैठे हुए वो सारी उसकी जीवन कहानी याद आ जाएगी, तो बाबा को याद करना अर्थात उसकी बातें याद करनी है, उसको अपने अंग संग अनुभव करना है सूक्ष्म रूप से, हर कर्म करते हुए, चाहे हम किचन में हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे चलते फिरते हैं, चाहे वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे सब्जी काट रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको हर कर्म में बाबा कहते मुझे यूज करो, लेकिन बाबा कहते बच्चे यूज नहीं करते हैं, सर्वशक्तिवान खुद ऑफर कर रहा है कि मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे लिए है, लेकिन उसको उसके ऑफर को पूरा स्वीकार ही नहीं करते हैं। इस समय परम को जब जरूरत पड़ती है तब याद नहीं करते, और जब परिस्थितियां आती हैं तो फिर याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम ठीक ठाक थे तब क्यों ही नहीं याद किया, तो स्वार्थ हमारा पैदा हो जाता है। तो निस्वार्थ रूप से बाबा को याद करना है, ऐसा नहीं परिस्थितियां आए तो हम याद करेंगे, नहीं। याद हमको ज्यादा से ज्यादा तब प्रैक्टिस करनी है जब हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एकदम कोई विघ्न नहीं है, उसी से हमको ज्यादा से ज्यादा अपने जमा का खाता बढ़ाना है। तो कहां थे हम कि बाबा कहते अकेले कभी नहीं रहना, अकेले नहीं रहना, हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। उसके बाद बाबा ने क्या कहा, फिर ब्रह्म भाव की विशेषता बताई कि तुरंत दान महापुण्य। बाबा ने एक धक से सारा कर दिया, और उसका परिणाम क्या निकला कि एक ही आत्मा है, ऐसी महान आत्मा है जो इतना आगे चली गई सारे कल्प में, जिसकी चार प्रकार से बाबा ने उनका गायन बताया, पूजा होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो बाल रूप में, फिर लक्ष्मी नारायण तो लास्ट में, बीच में दो और हैं, फिर श्री कृष्ण के रूप में, फिर गोप गोपियों के रूप में, फिर लक्ष्मी नारायण के रूप में, और वर्तमान में ब्रह्मा बाप भी है, पुष्कर अजमेर में तो है ही है ना, तो राधा सेकंड नंबर है। तो फिर भी गायन तो है उनका भी, मामा का गायन तो है, लेकिन फिर भी नंबर वन ब्रह्मा बाबा को कितनी बड़ी विशेषता, किस आधार पर? तुरंत दान महापुण्य। माना बाबा के हिस्से में जो भी हम सुनते हैं कि बाबा ने समर्पण के बाद एक रुपया भी अपने लिए खर्च नहीं किया, कितनी बड़ी बात है, एक रुपया भी दे दिया। इसलिए कहते हैं ना, एक हाथ से दे दूसरे को पता नहीं चला, तो वो एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का है। तो हम लोगों को तो फिर भी हम सोच सोच के करते हैं, इसलिए सोचते सोचते त्रेता में नहीं पहुंच जाए कहीं, ये हमको ध्यान रखने का है। तो ये बाबा की विशेषता थी कि तुरंत दान महापुण्य। और क्या कहा बाबा ने इसके आगे, फिर इसके बाद क्या कहा? पूजा में अंतर। हाँ, यही फिर पूजा में अंतर पड़ जाता है, वो इरादे और इसका बता दिया है। और क्या कहा इसके बाद? और भी अभी पांच सात बातें और हैं। बुद्धि को चलाना चाहिए, नहीं तो मुरलियां निकल जाती हैं। हम अपने आप को देखते हैं ना, मुरली हाथ में आती नहीं है, बहुत बार पढ़नी पड़ती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हाथ में आती। फिर वो ही एक ही लाइन, अपने को आत्मा सुन बाप को याद करो। लेकिन नहीं, इस बात को पक्का करने के लिए उसका ज्ञान बुद्धि में चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा चार खजाने जमा करने हैं, बताया ना। फिर बाबा ने बच्चों के खाते को, जमा के खाते को चेक किया कि खजाने कहां तक जमा है। कौन कौन से खजाने थे? ज्ञान का खजाना, फिर श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, फिर शक्तियों का खजाना, फिर समय का खजाना। तो ज्ञान का खजाना कैसे जमा करेंगे हम? हाँ जी, हाँ, मनन चिंतन करना और दूसरों को सुनाने से, और अपने आप को भी सुनाने से, और कैसे जमा करेंगे? क्योंकि बड़ा ज्ञान चाहिए है, समय प्रयोग करेंगे, और मुरली को बार बार रिवाइज करने के, आपस में ज्ञान चर्चा करेंगे, कुछ विशेष टॉपिक लेके उस पर चिंतन करना है। जैसे कोई भी एक मुरली है तो सारी मुरली अगर याद नहीं भी रहती है तो कुछ एक 10-15 शब्द पकड़ लेने मुरली के, और धीरे धीरे वो याद रहेंगे, धीरे धीरे आप बैठेंगे, सचमुच बाबा की मदद मिलती है। हमने कई बार देखा है 10-15 शब्द भी पकड़ लो, केवल शब्द, फिर धीरे धीरे मुरली का धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाती है। चार खजाने कौन से कहे, ब्रह्मा बाप की विशेषताएं कौन सी कही, स्लोगन के बारे में क्या कहा, उसका परिणाम क्या है, जमा नहीं होता तो उसके क्या कारण है, व्यर्थ संकल्प चलते उसका क्या कारण है, उसका परिणाम क्या है। तो धीरे धीरे वो बातें ऊपर वाला अपने आप मेहरबानी करता है। अगर उसने हमको इतना दूर से आकर पढ़ाई पढ़ाई है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो वो हेल्प भी कैसे करेगा? स्कूल में भी तो टीचर उसी बच्चे की हेल्प करता है ना जो टीचर की कुछ मानता है, अगर मानेंगे नहीं तो करेंगे क्या है? तो आजकल के बच्चे भी स्कूल में कितने, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बाबा के भी हम बच्चे भी, हमको भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है बाबा को। तो हम जो भी ज्ञान के टॉपिक अलग अलग मिलते हैं उनको थोड़ा उस पर शब्द के रूप में या टॉपिक के रूप में पकड़ उन पर चिंतन करें तो हमारा ज्ञान का खजाना बढ़ता रहेगा। और ज्ञान हमारी ये संपदा है, पूंजी है, अविनाशी पूंजी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है। तो इस संपत्ति को हम पकड़ के नहीं रखेंगे तो हम तो गरीब के गरीब रह जाएंगे। बाबा ने कहा पढ़ाई को कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई की कितनी वैल्यू होती है? बड़ा ऑफिसर केवल साइन करता है और करता है कुछ तो, लेकिन उसका पीछे उसका मेहनत किस पर होती है? सारी पढ़ाई पर होती है, फिर बाद में उसको बैठना ही है। तो हमारी पढ़ाई कितनी हो रही है, खजाना कितना जमा हो रहा है? इस यज्ञ में भी देखो जो भी आगे जा रहा है ज्ञान के बल पर, और योग का आधार भी क्या है? ज्ञान ही है, सीधी सी बात है। जितना ज्ञान बुद्धि में होगा उतना योग लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा तुम योगी जीवन वाले हो, योग लगाने वाले नहीं हो। शांतिवन में जो मुरली जली, योगी जीवन है हमारा, योग लगाने वाले नहीं। लेकिन योगी जीवन तब होगा जब ज्ञान हमारा कर्मेंद्र में समा जाएगा, अंग अंग में ज्ञान समा जाएगा, हमारी आंखों में वो ज्ञान समा जाएगा। उस ज्ञान के आधार से वो आंखें देखना शुरू कर दें, आत्मिक दृष्टि से देखें, रूहानी दृष्टि से देखें, रूहानी जागृति आ जाए, जो बाबा ने कहा अलौकिकता आ जाए उन आंखों में, उन आंखों में नूर चमकना शुरू हो जाए, मस्तक में वो लाइट दिखना शुरू हो जाए, हमारे पीछे वो लाइट साक्षात्कार। बाबा ने आज के मूल्य में साक्षात्कार का जिक्र किया, कहां पर किया? हाँ जी, वरदान में। हाँ, कौन सा साक्षात्कार था? मधुरता का साक्षात्कार। हाँ तो हाँ जी, तो जैसा बाप वैसे बच्चे, जो बाप के लक्षण है वो बच्चों में दिखाई देने चाहिए। तो अगर हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, बाबा की शिक्षाओं को बार बार देखते हैं, है ना, जैसे किसी से प्रेम होता है या किसी की सगाई होती है तो क्या करते हैं? वो शुभ शुभ की फोटो देखते हैं ना। आजकल तो नहीं देखते होंगे, पहले तो देखते थे, अभी तो हम कोई शुभ शुभ की मुरली पढ़नी है उसकी, वो लव लेटर है हमको आया हुआ, और लव लेटर को पढ़ते नहीं तो प्रेमी हमसे प्यार कैसे करेगा? हम उसकी सजनियां हैं, वो हमारा साजन है ना, तो फिर कैसे प्यार करेगा वो? तो उसके ज्ञान को जैसे एकदम चिपक जाना है, तो हमारा ज्ञान का खजाना बढ़ता जाएगा। और शक्तियां कैसे बढ़ेंगी? शक्तियों का खजाना कैसे बढ़ेगा? हाँ जी, मौन रहने से। हाँ, संकल्पों की बचत से, बिल्कुल सही। और मनन चिंतन से भी शक्तियां बढ़ेगी। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी शक्तियों की हमको जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा कौन सी शक्ति की जरूरत पड़ती है? लव को सहन करने की, माताओं को सहन की करनी है। जिसको जरूरत हो रही है उसको, उसके मुख से वो ही निकल रहा है। तो इसमें अनुसार सबका अपना अपना होता है। किसी को सहन करने की जरूरत है, किसी को समाने की है, किसी को सामना करने की जरूरत है, तो किसी को निर्णय करने की जरूरत है, किसी को सहयोग सुने, अलग अलग शक्तियों का भंडार पड़ा पड़ा है। तो इस पर चिंतन करना है। अव्यक्त वाणियां, बहुत सारी वाणियां शक्तियों के ऊपर चली है, शीतलता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, अभी कुछ दिन पहले मुरली चली ना, तो ये शक्तियां हमारे में समा जाएंगी, ऑलरेडी हैं ही। जैसे समाने की शक्ति है, छोटी सी बात है, अगर हमको किसी ने कुछ कह दिया किसी के बारे में, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है जो हमको मर्यादाएं सिखाती हैं कि हमको उस बात को अपने तक ही सीमित रखना है बस। अगर हमने उस बात को अपने तक सीमित रख दिया तो हमारी वो समाने की शक्ति परमानेंट हमारी अपनी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम उस बात को समाया नहीं और किसी को बता दिया तो हमारा पाप का खाता बढ़ता जाएगा और ही हमारे पर बोझ चढ़ जाएगा। एक तो पहले से बोझ उतर नहीं रहा है और नया बोझ चढ़ा लेंगे, तो हमें हिसाब किताब क्लियर करना है, संकल्पों का हिसाब किताब सूक्ष्म रूप से हमारे में, विकल्पों का, विकर्म विकारी संकल्पों का हिसाब किताब हमारे मन पर बोझ न डाले। तो शक्तियां धीरे धीरे हमारा अपना खजाना बढ़ती जाएगी, इसलिए शक्तियों का खजाना बढ़ेगा। तीसरा कौन सा खजाना बताया? श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। तो श्रेष्ठ संकल्प कहां मिलेंगे? मुरली से मिलेंगे। रोज की मुरली में कितने संकल्प? रोज मुरली को नए तरीके से भी पढ़ना चाहिए, माना जो भी हम सुनते हैं, तो रोज की मुरली से 10 श्रेष्ठ संकल्प अपने खुद निर्माण करने हैं, है ना। तो कौन कौन से संकल्प होते संकल्प श्रेष्ठ संकल्प हो सकते हैं? शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, समर्थ संकल्प, कौन कौन से हो सकते हैं? सोमान के रूप में ले सकते हैं, है ना, कि बाबा मुझे किस रूप में देख रहे हैं। और कौन से रूप में ले सकते हैं? वरदान के रूप में ले सकते हैं, है जी, शक्ति के रूप में ले सकते हैं, और गुणों के रूप में ले सकते हैं, दृष्टि से, दृष्टि के रूप में ले सकते हैं कि आज मैं आत्मिक दृष्टि से देखूंगा, अर्थात मेरे स्वभाव में ही आत्मिक दृष्टि से देखने की बाबा ने कला भर दी है, ऐसे लिखना है, तो पक्का हो जाएगा। बार बार क्या लिखेंगे? मेरे मन बुद्धि में बाबा ने जो कला भरी है सबको आत्मिक दृष्टि से देखने की कला भर दी है। बार बार उसको संकल्प को फीड करते जाएंगे तो आंखों पर धीरे धीरे कंट्रोल होगा। नहीं तो आंखें, बाबा कहते सबसे बड़े धोखा देने वाले कर्मेंद्रिय कौन सी है? आंखें हैं। इन्हीं आंखों से शक्तियां जाती हैं और इन्हीं आंखों से शक्तियां आती भी हैं। देखने मन तो फिर भी बाद में है, पहले सबसे पहले आंख ही है। किसी को देख, विचार हमारा किसी को देखने के बाद ही चलता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। इसलिए इन आंखों को बहुत शीतल बना देना, बहुत ठंडा ठार बना देना है, बहुत अलौकिक दृष्टि से संपूर्ण एकदम पवित्र आंखें हो जाए, पावन आंखें हो जाए, प्योर आंखें हो जाए, दृष्टि पवित्र हो जाए। तो लंबे समय से अभ्यास करेंगे, शुद्ध संकल्पों का खजाने का निर्माण हमको खुद ही करना है। फिर नेक्स्ट कौन सा खजाना बताया लास्ट में? समय का खजाना। तो समय को देख रहे हैं, अगर देखो स्टूडेंट सारा साल पढ़ता है, स्कूल में जाता है और परीक्षा के टाइम में अगर 2 मिनट भी लेट गया तो सारा साल खत्म हो गया। तो हम अपने जीवन को देखें, हमारी गोल्डी स्टूडेंट लाइफ है, तो हम भी कहीं ना कहीं लेट तो नहीं हो रहे हैं, है ना? योग में थोड़ा सा टाइम है, योग के टाइम में कुछ दूसरे काम धंधे में लगे हुए हैं। जिंदगी भर, है ना, एक व्यक्ति था जिंदगी भर पैसा कमाता रहा, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया उसने और अपने लिए सुख सुविधाओं के लिए खर्चा ही नहीं। अंत समय आ गया सिर के ऊपर, यमराज आ खड़ा हुआ सामने, भाई तेरा टाइम पूरा हो गया। तो वो कहता भाई अभी तो खाने का टाइम हुआ, मैं तो कमाई में लगा हुआ था पूरी जिंदगी भर। बोला नहीं, तेरा टाइम पूरा हो गया, तुम चल मेरे साथ। तो उसने बड़े हाथ पांव जोड़ के कहा, बोला कम से कम 1 मिनट दे दो। बोला बिल्कुल नहीं, काम पूरा हो गया। तो कमाता रहा, खाया ही नहीं उसने। बोला चलो 2 घंटे दे दो, 1 घंटा। वो यमराज ने कहा नहीं बिल्कुल चल मेरे साथ। तो फिर बोला अच्छा एक मिनट तो दे दो। तो 1 मिनट उसने पत्थर लिखा कि जिंदगी भर मैं कमाता रहा लेकिन उसको खा नहीं पाया। तो ऐसा अपने साथ नहीं करना है कि हमारा जो जीवन है इतना अनमोल जीवन है, 21 जन्मों के लिए जमा कर रहे हैं, तुम्हारे ज्ञानियों का टाइम कहीं दूसरी बातों में न चला जाए। धन तो कमाना है आवश्यकता अनुसार, जो घर गृहस्थ में रहते धन कमाना है, लेकिन उस धन के भी इतना न पीछे पड़ जाए कि हमारा जो अविनाशी धन वो छूट जाए कहीं। वो उस अपनी दिनचर्या को उस अनुसार चलाना है, उसी में भागदौड़ में चल जाए। अर्थात जहां भी हम रहते हैं सवेरे शाम हमको थोड़ा थोड़ा कम से कम घंटा घंटा तो योग करें। अमृत वेला हमारे हाथ में होता है, उसमें अच्छा सहयोग कर लें, बाबा से बड़े प्यार से रूरवान करें, उसको वरदानों से उसके अपने आप को झोली से अपनी झोली में भर लें, वरदानों उसके वरदान उसका स्वरूप बन जाए सारे दिन में, है ना? उसके लिए बाबा ने आज के मूल्य व्यास होता है। तो ये 4 खजाने थे। फिर बाबा ने और क्या बताया इसके आगे? फिर बाबा ने कहा कि बाप को हद का भी देखना पड़ता है। बाबा भी हद में आए हैं, समय हद में है। ये अर्थात ये शरीर लोन पर लिया हुआ है, टेम्परेरी है। तो हमको ये अभ्यास बताया इसी के साथ बाबा ने आगे। कौन सा अभ्यास बताया कि सारे दिन में कौन सा अभ्यास करना है? अव्यक्त कर्मातीत स्थिति और अव्यक्त परिस्थिति का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा नीचे नहीं आना है, ऊपर रहना है, और नीचे आएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। अगर देखते हैं किसी को कमजोर हो गया तो उनको स्मृति दिलाओ, है ना? तो ये बात थी। एक और बात थी, दिल्ली वालों को बाबा ने याद किया था सेवा के बारे में। अगर स्नेह से सेवा करते हैं तो उस सेवा से क्या होता है? वर्तमान और भविष्य दोनों श्रेष्ठ बनते हैं और खुशी मिलती है, और उस सेवा से दूसरों का भी भाग्य बनता है, उनको भी बाप की स्मृति आती है। अगर हम उस सेवा को बाबा की याद में कर रहे हैं तो वही स्वरूप उनको दिखेगा और वो भी बाप का अनुभव करेंगे। तो एक ये बात थी सेवा की। तो वहां दिल्ली में आया था टेलेक्स, फैक्स से पहले होती थी टेलेक्स, यहाँ टाइप करते थे और उधर निकलता था। तो वो थी, और बाबा ने वहां मुबारक दी, साधन की मुबारक नहीं दी। बाबा ने कहा साधनों की मुबारक नहीं है, सेवा की मुबारक दे रहे हैं, है ना? तो हम ऐसा नहीं करें कि हम साधन तो ले रहे हैं और उसका रिबन रिबन कटा रहे हैं, उसी की मुबारक ले रहे हैं। उस साधन से हम कितनी सेवा करें उसकी बाबा हमको मुबारक दे, है ना? तो एक ये बात थी। और क्या था? एक था फिर कर्म और योग का बैलेंस, है ना? कर्म करते बाबा ने कहा कर्म में भी इतने अनुभव हो जाए कि कर्म ही शक्तिशाली और योग कमजोर हो जाए, या योग शक्तिशाली और कर्म कमजोर हो जाए, दोनों का बैलेंस चाहिए। तो कर्म और योग का बैलेंस। और फिर वरदान में क्या कहा? संकल्पों में मधुरता, बोल में मधुरता, कर्मों में मधुरता। बाबा ने कहा इस मधुरता के कारण क्या होगा? बाप का साक्षात्कार होगा। और बाबा ने फिर बच्चों को, बाबा बच्चों का गीत गाते हैं, बच्चे बाबा का गीत गाते हैं, कौन सा? बाप कहते हैं मीठे बच्चे और बच्चे कहते हैं मीठे बाबा। और जो मधुरता है यही डैश है क्या? मधुरता ही डैश है, मधुरता ही महानता है। बाबा ने कहा मधुरता ही महानता है। तो हमारे जीवन में कितनी मिठास आ रही है, क्योंकि वो मीठा है। बाबा मीठा है तो मीठे स्वीट का पहाड़ कहते हैं ना उसको, वो स्वीट का पहाड़ है, हम उसके बच्चे हैं। और हमारे जीवन में नीम जैसा हो, कड़वे हो, तो कितना खराब लगेगा। तो हमको भी मीठा बनना है, हमारे बोल में मिठास, हमारी दृष्टि में मिठास, हमारी सोचने में मिठास, हमारे कर्मों में मिठास। अर्थात दूसरों को हम कितना सुख दे रहे हैं, सबके प्रति हम अच्छा सोच रहे हैं, सबके प्रति, ये सबसे बड़ी सेवा, सबके प्रति। किसी ने हमको कुछ कहा भी हुआ है उसके प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रखना, तो कितनी मिठास आ रही है ये देखना है। और स्लोगन क्या था आज का? हाँ, डबल लाइट होकर रहो तो हर कार्य क्या लगेगा? मनोरंजन। तो ये आज की मुरली थी। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट रह गए बताओ, कुछ तो रहे हुए हैं पॉइंट अभी। हाँ, एक कंबाइंड में बात थी कि सारे कल्प में ऐसे कंबाइंड जोड़ी नहीं मिलेगी, भले लक्ष्मी नारायण की जोड़ी होगी लेकिन वो तो साकार वाली है, निराकार जोड़ी है। तो ये सारे कल्प में ये वंडरफुल जोड़ी है, ये मिलेगी नहीं। और रूहानी वाइब्रेशन, रूहानी जागृति, वो सेवा की बात थी, सेवा करते करते उनको भी ऐसे वाइब्रेशन होंगे। और हाँ, एक ये बात थी कि वो ये थी बात कि बाप बच्चों को देखते हैं, बच्चे अपने वर्तमान को देखते हैं, लेकिन बाबा तीनों कालों को देखते हैं। बच्चों के भविष्य को देख के बाबा सोचते हैं कि बच्चे तो हकदार हैं, अधिकारी हैं, लेकिन बच्चे वर्तमान को देख के अचल हलचल में आते रहते हैं। इसलिए बाबा तीनों को, तो हमको भी अपने भविष्य को भी देखना है साथ में, हकदार हैं हम, अधिकारी हैं। और कौन सी बात रहेगी? दृढ़ संकल्प, दृढ़ता से ही क्या मिलेगा? सफलता मिलेगी। तो हर बात में दृढ़ता चाहिए, अर्थात सिर्फ कफन बांध लिया तो भी कुछ भी हो जाए, चाहे इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगे, यार पार होंगी, कुछ भी कहेंगे, सब बोलेंगे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, है ना। हमारे पिताजी ने बोला था मैं भी मर जाऊंगा, मतलब मर के दिखाओ। कोई नहीं मरता, कोई किसी नहीं पड़ी। तो ये जीवन में तो होता ही रहता है। और क्या बताया? हाँ जी, महाप्रसाद, हाँ जो बलि की बात है वो महाप्रसाद। तो ये 15 बातें थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहली बात थी क्या? नहीं, सबसे पहले थी, हाँ अभी नहीं कभी नहीं भी है, दूसरी है। सबसे पहली बात थी ब्राह्मण बने, अर्थात ये ब्राह्मण जन्म मिला, जीवन मिला, ये युग है, अर्थात जमा करने का युग है। इस जमा के आधार पर हमारा सारा कल्प चलेगा। राज्य पद है, पूज्य पद है, उसी के आधार पर प्रजा भी तैयार होगी, भक्त भी तैयार होंगे, और उस वो प्रजा भी हमको माता पिता के रूप में अनुभव करेंगे। अर्थात इस समय हम जितना सबका दिल जीतते हैं उसी के आधार पर हमारा वहां गायन योग पूज्य। अगर इस समय हमारे से कोई दूरी दूरी बना रहे हैं तो वहां भी टेम्परेरी पूजा, जंगल में एक मंदिर बना देंगे, साल में एक बार जाएंगे, है ना, एक चोटी पर बना देंगे और साल में चढ़ते चढ़ते हाँफते हाँफते पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें प्रसाद भी हाँफते हाँफते किया हुआ है। तो ऐसा हमारी पहली बात, जमा का खाता हमको देखना है कि उस जमा के खाते के आधार पर हम कितना अपना जमा कर पाए हैं। और दूसरी बात थी अब नहीं कब नहीं है, तो कब नहीं, अगर ये स्लोगन याद रहेगा तो 4 बातें हो जाएंगी। कौन सी? एक तो कार्य श्रेष्ठ हो जाएगा, दूसरा उमंग सा रहेगा, रूहानी जागृति स्वतः आ जाएगी, और चौथा कर लेंगे हो जाएगा, होना तो है, ये संकल्प व्यय संकल्प समाप्त हो जाएगा। तो ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात, हाँ, और ये भी था, और तीसरी बात क्या थी? समय की बात थी। समय बदलने पर शुभ संकल्प भी बदल जाता है, तो गैप नहीं रखने का बीच, तुरंत दान महापुण्य, उसको छोड़ने का नहीं है। तो ये तीसरी बात थी, अगर समय पर हमने छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? वो महाप्रसाद बलि के रूप में, ये चौथी बात थी उसका, वो महाप्रसाद के रूप में नहीं होगा। तो झट से झट को समर्पण माना, मन से समर्पण, है ना। और पांचवी बात थी, पांचवी बात कौन थी? सोचते सोचते त्रेता में नहीं पहुंच जाना, ये थे। अगर ज्यादा सोचते रहेंगे तो सोचते सोचते तो अपने सोचना नहीं है, जो बीत गया उसको छोड़ देने का। आज का हमको अनुभव करना है, आज का हमको जो इतना अच्छा अच्छा मीठा मीठा शुभी रस मिल रहा है उसकी चुस्कियां लेनी है, उसका स्वाद दिख चखना है हमको अच्छी तरह से, उसके अच्छे अच्छे पॉइंट लिखने हैं, वो सुनाने हैं, किसी को संदेश देना, तो अभी अभी दे देना है, भरोसा थोड़े ना कल शरीर छूट जाए। तो जो भी काम करना है उसे कर डालने का, सोचने का रखने का नहीं है, नहीं तो सोचते सोचते सारा काम छूट जाएगा। फिर दोबारा जन्म लेना, जन्म तो अब यहीं लेना पड़ेगा अगर अभी शरीर छूट गया तो, फिर नए शरीर से पुरुषार्थ करेंगे तो फिर पुरुषार्थ भी उसी लहर से चलेगा। इसलिए जो करना तुरंत कर डालने का है, किसी को संदेश देना दूर बैठा हो चिट्ठी लिखना, चिट्ठी लिख के भेज दो बस, दो चार बार दे दो, अगर किसी के समझ में आएगा तो ठीक है, हम अपनी तरफ से उलाना न रह जाए, हमको कल कोई उलाना दे के या भगवान आया हुआ था और आपने हमको बताया नहीं। तो ये सोचते सोचते और फिर नेक्स्ट कौन थी, छठी बात थी संकल्पों की, संकल्पों का हिसाब किताब है ना। व्यर्थ संकल्प अगर चलते हैं, समर्थ का पद्म गुणा जमा होता है, लेकिन व्यर्थ संकल्प की फिर क्या होता है, उदासी आती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, खुशी गुम हो जाती है, फिर सोचते हैं पता नहीं इतने दिनों से खुशी कहाँ चली गई हमारी। फिर इसके बाद सातवीं बात कौन सी थी, फिर अकेले हो जाते हैं, अकेले होने से क्या होता है, फिर जाते हैं पहाड़ों पर जाते हैं, सोचते हैं कहीं दूर दूर हैं सागर के किनारे जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा नेक्स्ट कि संगमयुग कम्बाइंड रहने का योग है, बारहवां जीवन एक कम्बाइंड रहने का जीवन है, कम्बाइंड रहने का योग है, इसलिए कभी अकेले नहीं होना, अकेले होगे तो माया को मार्जिन मिल जाए, माया को चांस मिल जाता बीच में, वो अपना अटैक करेगी, मारेगी, फटकाएगी, हमारा दम घुट देगी, माया बड़ी दुस्तर है, प्रबल है, जबरदस्त है। तो ये चीज थी, उसके आगे क्या बताया, ब्रह्मा बाप की विशेषताएं बताई, तुरंत दान महापुण्य सोचा नहीं किया, इसी के आधार पर वो नंबर वन महान आत्मा बन गई, भले मम्मा का गायन है लेकिन झूला नहीं झूलाते साथ में। वहां फिर बाबा की चार प्रकार की पूजा, कौन सी, बाल रूप में, फिर श्री कृष्ण के रूप में, फिर गोपी गोपी के रूप, गोपी गोपी के रूप में, फिर लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो ये बात थी। फिर चार खजाने जमा, कौन कौन से, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्प का, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना और समय का खजाना। तो ये चार खजाने हमारे कितने जमा हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट, स्नेह से सेवा करेंगे तो क्या होगा, खुशी मिलेगी, और जिस स्नेह स्वरूप का अनुभव करते हुए सेवा करेंगे तो दूसरे भी बाप के स्नेह का अनुभव करेंगे, उनको भी बाप की अनुभूति होगी, उनको भी हम बाबा का साथ का अनुभव करा सकेंगे। फिर उसके बाद बाबा ने क्या कहा, कर्म और योग का बैलेंस रखना है, ऐसा नहीं कर्म में कर्म कॉन्शियस हो जाए, पूरा कर्म कर्म ही कर्म बुद्धि में, और फिर जैसे योग में बैठे तो वो सारी बस, वो सेवा भी हम करते तो सेवा भी याद नहीं आनी चाहिए योग में, लेकिन वो लंबे समय के बाद होगा। हाँ, वो सेवा जरूर याद आएगी जहां हमारी गलती हुई है, तो अचानक से क्लिक होगा यहाँ गलती हुई है, यहाँ नहीं करनी चाहिए थी, वो सेवा याद आएगी, लेकिन वो सेवा हमको पकड़ में नहीं आए। तो ये वाली कर्म और योग बैलेंस। और फिर बाबा ने कहा सारे दिन में कर्मातीत अवस्था और अव्यक्त परिष्ठ रूप स्थिति का अनुभव करते रहना, ये छोड़ने का नहीं, अगर कमजोर भी हो जाते हैं तो दो एक दो को याद करा के उस समर्थ स्थिति में स्थित रहो, सारे दिन ये अभ्यास करने का लगता। और एक और बात बताई थी कि अभी होमवर्क ज्यादा दी थी लेकिन पढ़ाई कम है, होमवर्क हम को बहुत करना है और पढ़ हम कम कर रहे हैं, पढ़ाई हम कम कर रहे हैं, ठीक है। और वरदान में था मधुरता की बात, तो मधुर संकल्प, मधुर बोल, मधुर कर्म, अगर ये रहते हैं तो मधुरता ही बाप के साथ का अनुभव कराएगी, साक्षात्कार कराएगी, और मधुरता ही महानता है। इसी के आधार पर बाप गीत गाते हैं, बा मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे गीत गाते हैं मीठे मीठे बाबा। और लास्ट में स्लोगन, कौन सा स्लोगन था, डबल लाइट होकर सेवा करेंगे तो हर कार्य मनोरंजन का अनुभव होता रहेगा, ठीक है। ओम शांति।